दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हर किस मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवी उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुमेरात है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नखमाए सहर और बस्मे दीवान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 20वां बाब पहली 16 आयात। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आसमान की बादशाही उस मालिक के मकान की मानित है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोजाना ठहरा कर उनको अपने ताकिस्तान में भेजा, और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने छठी और नवीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुलाओ और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। फिर जब पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमको ज्यादा मिलेगा, मगर उनको भी एक ही एक दिनार मिला और वो लेकर मालिक के मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ए मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता, क्या तूने मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ, या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा मन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में उस बड़े असूल को जो मत्ती 19 बाब में है और मत्ती 20वें बाब की 15 से 16 आयत में है दोहराया गया है। ये आयत वाजे कहती हैं कि अजर का दारोमदार ज्यादा खिदमत या अच्छी खिदमत पर नहीं है, इसका इन्हिसार खुदा के फजल और मसीह पर ईमान पर है। पतरस का ख्याल था कि चूंकि उसने उस्ताद की खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए वो उसे यकीनन बड़ा अजर देगा। यीशु ने अजर का वादा तो किया, लेकिन साथ ही उसने उस नियत की मलामत भी की जो मोहब्बत और शुक्रगुजारी के बजाय किसी को अजर हासिल करने के लिए खिदमत करने पर उकसाती है। यीशु अब्दी अजर देने में बादशाह है। अजर यकीनी है, लेकिन अजर हासिल करने की नियत से खिदमत न की जाए। ए खुदावन, हमें ये तौफीक दे कि हम अजर हासिल करने की नियत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से और शुक्रगुजारी से तेरी खिदमत कर सकें। आमीन।
दोस्तों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और मेरे साथ हैं जी आपकी जानी और पहचानी और पसंदीदा शख्सियत अंकल दीवान। पेश खिदमत है जी आपका अपना प्रोग्राम बसमें दीवान।
सुनाइए सामिन, कैसे हाल अहवाल हैं आपके भाई? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावन के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। है जी, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए।
जी हाँ, क्योंकि दोस्त हम तो आपके लिए हमेशा दुआ को रहते हैं कि हमारे दोस्त हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।
वैसे इरम, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, लेकिन मैंने दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शख्स देखे हैं जो जहन से ज्यादातर खाली होते हैं।
क्या मतलब जहन से खाली होने और मेरा ताल्लुक क्या अंकल इसके साथ?
मैं कह रहा हूँ हर बंदे का अपना अपना एक मियार होता है ना कि हाँ? तुम मेरा मतलब है कि जहनी तौर पर इतनी स्ट्रांग हो, तुम्हारा जवाब नहीं। मेरे कहने का ये मतलब था, लेकिन एक बंदा जो है ना उसकी बात में बताने लगा था।
अच्छा अच्छा।
उसने कत्ल किए हुए थे 3-4।
ओहो, जज ने उसको, लोगों से वाकफियत है अंकल आपकी।
बताओ कुछ, बस क्या करें, 3-4 कत्ल किए हुए थे।
अच्छा।
तो अदालत में पेश हुआ तो जज ने कह दिया कि तुम्हारा जुर्म जो है ना साबित हो गया है, कल सुबह तुम्हें 6 बजे जो है ना फांसी पर लटकाया जाएगा।
अच्छा।
अब उसका आगे से देखो जवाब, कहता है सर ये बताए उतारा कब जाएगा, शाम को मैंने रखा लेके भी जाना। लो कर लो बातें।
अच्छा अंकल, चले ये तो थे ऐसे जुर्म जिनके ऊपर फांसियां दी जाती हैं। अंकल एक नया कानून आया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? चले कानून भी आपको बताती है, जो खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है और उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे में एक कानून पास किया हुकूमत ने।
अब तुम्हारा मतलब है कि मैं इस कानून के हक में जो है मतलब बातें करूं?
नहीं अंकल, हक की बात या मुखालिफ होने की बात नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा बातें उठ रही हैं। कुछ इसको ठीक कह रहे हैं, कुछ इस कानून को गलत कह रहे हैं। जो खवातीन के तहफ्फुज के लिए कानून नाफिज किया गया है कि अब कोई मर्द जो है खवातीन को हरासा नहीं कर सकता है, उसको मार पीट नहीं सकता, खासतौर पर शोहरों के लिए कानून है और शोहर और बीवी जो है, तो ऐसे में अगर कोई खातून जो है अपने खावंद की इस तशद्दुद से तंग है तो वो उसकी शिकायत कर सकती है और फिर 3 दिन के लिए खावन को एक कड़ा पहनाया जाएगा, उसको उतारने पर जो है वो मजीद सजा का हकदार होगा।
अच्छा, कड़ा ये जो है मतलब उसको जो पहनाया जाएगा?
जी जी।
ये जहरी सी बात है भाई, लोहे का होगा या स्टील का होगा?
अंकल अब ये तो पता नहीं, अब ये तो मैं एक दफा इस पर अमल करूंगी तो तभी जाके आपको सही तरीके से बता पाऊंगी।
मैं समझती हूँ जो लोगों के जहनों पे जुनून सवार हुआ होता था ना शादी का, अब थोड़ा हल्का हल्का जो है ना मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। वो एक लड़का था हमारे मोहल्ले में ना, तो उसके बाप ने उसको बोला यार मैंने तुम्हें कहा था पिछली दफा भी कि अगर तुम फेल हुए तो मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है।
अच्छा।
पिछली दफा तो हो गया मतलब टल गई बात।
हाँ।
तो इस दफा पेपर आ गए सर पे।
हाँ।
तो अगर इस दफा तुम फेल हुए ना तो मैंने वाकई शादी कर देनी है तुम्हारी।
अच्छा। ठीक है।
बाप ने बाद में पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है।
अच्छा,
कहते बाकी तैयारी हो गई है, बस वलीमे का सूट रह गया। तो सारी सी बात है भाई, ये अब जो है ना ट्रेंड थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे मैं कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़े लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं, हैं जी, और आदमी होने के नाते बंदे को थोड़ा सा इस पे गुस्सा भी आता है कि पहले घर में हुक्मरानी अपनी होती थी
तो अब डर के रहना पड़ेगा। हाँ
जी, वैसे डर के तो मतलब पहले भी रहती थी, पहले कौन से बड़े तीस तीस मार खान होते थे बंदे। लेकिन ये है ना कि जिनकी नफ्सियात में खवातीन पे तशद्दुद करना होता है ना, वो थोड़े से अब मोहतात हो जाएंगे, और मोहतात होना भी चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं बेटी खुदा की तरफ से रहमत होती है, और दूसरी तरफ से बेटियां जब मैट्रिक में पहुंचती हैं तो हमें फिक्र लाहक हो जाती है कि जल्दी जल्दी इनकी शादी करो, है जी, अपने सर से जिम्मेदारी उतारो।
सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन एक ट्रेंड ये भी है, या एक हमारी सोच जो है वो ये भी है कि बेटियों से डर नहीं लगता। आगे जब हम कहते हैं, आमतौर पर ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों की किस्मत से डर लगता है। और जब बेटियां जो है किसी ऐसे शख्स के पल्ले बंध जाएं,
शाबाश, फिल्में देखना छोड़ दो, ये जो तुम जोड़ तोड़ बनाती हो ना जुमलों के, वो कहते हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है जी, ये इस तरह बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों की किस्मत से डर लगता है।
अंकल, ये तो बात डायलॉग नहीं है ना, ये तो डायलॉग नहीं बात,
ओ ये तो अगले घर की बात है ना। लेकिन अपने घर में भी हम कौन सा बेटियों को बेटों के बराबर जगह देते हैं?
ठीक है,
एक घर की बात नहीं करनी, सारे माशरे की जब हम बात करते हैं।
सही कह रहे हैं अंकल आप, लेकिन जब एक बेटी जो है किसी ऐसे फर्द के पल्ले बंध दी जाती है या बंध जाती है, तो अंकल जब मार पीट आगे से शुरू हो जाती है और बेटी का जीना दोभर कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे में माँ बाप को ही परेशानी होती है ना। और जो एक लड़की जो दुख सह रही है, अपने घर वालों को छोड़कर आई है, परेशानियां उसके आमने सामने इर्द गिर्द सारा कुछ है, तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए शायद ये इकदाम जो उठाया गया है। और मैं ये सोचती हूँ कि इकदाम जो है वो,
हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कम अज कम इस बारे में बड़ा मोहतात अंदाज में बोलता हूँ क्योंकि मुझे इसकी पहली सजा मिल चुकी है। मैं खवातीन के हक में, खवातीन के हकूक के लिए बहुत आवाज उठाया करता
था। ओहो, अच्छा,
बस फिर क्या था, एक बार मुझे सबक मिल ही गया।
वो क्या अंकल?
वो क्या, एक बंदा जो है ना अपनी बेगम को बहुत मारता होता था।
अच्छा,
एक दफा तो उसने इंतहा कर दी, गली में उसको मार रहा था, हैं जी, उसके साथ ज्यादती कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था।
अच्छा,
मैंने आवाज सुनी बाहर से उसके रोने चलाने की।
हाँ,
मैं बाहर निकल आया। हाँ, अब मैंने कहा ए, खुदा का खौफ कर, औरत पे हाथ उठाते शर्म नहीं आती?
अच्छा,
अगर मर्द है तो मर्द पे हाथ उठा के दे।
सही कहा अंकल आपने, बिल्कुल ठीक कहा।
हाँ जी, बस फिर क्या था, जब मुझे होश आई तो मैं अस्पताल में पड़ा हुआ था।
यानी अंकल नेकी करना जो है आपको बड़ा भारी पड़ा।
भारी क्या, मुझे तो यकीन जानो 6 दिन समझ ही नहीं आई कि मैंने सुनना किस कान से और देखना किस आंख से है। यकीन जानो, तो ये है कि मतलब ये है कि हमें खवातीन पे ये जो तशद्दुद होते हैं इसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए। और वो ना मतलब औरत को, पंजाबी में कहते थे कि औरत को मारने का मतलब होता है कि कंध को मारने वाली बात होती है।
सही सही।
और वैसे भी हम कहते हैं कि जी औरत और मर्द जो होते हैं वो एक ही गड्डी के दो पहिए होते हैं।
जी,
तो जब एक गड्डी के दो पहिए होते हैं तो फिर उनको जो है ना आपस में मुसावात के साथ और बराबरी के हकूक के साथ चलना चाहिए।
जी अंकल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दोस्तों, इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। दोस्त, ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बज़्मे दीवान। जी दोस्तों, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जी, आज के प्रोग्राम में हम नए नाफिज होने वाले कानून के हवाले से बात करें जो कि खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए नाफिज किया गया है। तो अंकल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आमतौर पर खबरों में सुनने में आता है कि गैरत के नाम पर जी नाक काट दी है औरत की, या उसे घर से बेघर कर दिया गया है, उसे बच्चे छीन लिए गए हैं, और इस तरह की बहुत सी खबरें जो है वो सामने आती हैं। कि बाजू काट दिए, हाथ काट दिए,
ये तो जुल्म की इंतहा है ना, मतलब ये इंतहाई जहालत के काम है, ये गैरत के नाम पे। और अक्सर हमारे देही इलाकों में और पसमांदा इलाकों में अब भी ऐसी रस्में हैं कि यकीन जानो वो इंसानी के इंसानियत के तकाजों को ही पूरी नहीं करती। इतनी फरसूदा रस्में हैं, जालमाना रस्में हैं, हमें उन रस्मों की नफी करनी चाहिए। लेकिन अगर शहरी इलाकों में चले जाए ना तो कहीं कहीं हमें खवातीन का हाथ भी थोड़ा सा जो है भारी लगता है जी। ये ऐसा नहीं है कि खवातीन ही मार खाती हैं, कई दफा बंदों को भी मार खानी पड़ती है।
अरे अंकल ऐसा तो नहीं होता,
लोग कर लो बातें। वो कोई बंदा बात बता रहा था कि एक बेगम थी ना बीवी, उसका हस्बैंड घर आया शाम को, बैठा बूठा थोड़ी देर के बाद बेगम ने किचन से जो है ना उसको बेलन मार दिया।
अरे अंकल,
वो बंदे ने पूछा, उसने पूछा ये तुमने क्यों मारा है मुझे, कहती है कि तुम्हारी जेब से एक खत लिखा था जेनी का, जेनी के नाम का तुम्हारे सफा पे लिखा हुआ था नाम उसका।
अच्छा,
तो मुझे तो तुम पे गुस्सा ही बहुत था। बंदा थोड़ा चलाक था, कहने लगा वो दरअसल मैं तुम्हें पता है घोड़ों छोड़ों के रेस रूस खेलता हूँ, तो मैं वो उधर गया हुआ था तो उधर जिस घोड़ी पे मैंने पैसे लगाए हुए थे ना,
अच्छा
उसका नाम जेनी था।
अच्छा,
औरत कहती अच्छा चलो ठीक है। सवेरे उठी 10 बजे, अभी वो बंदा काम पे नहीं गया था, फिर बेलन पैसे ही आया ट्राफ करके लगा, कहते अब क्यों मारा है, कहती है तुम्हारी घोड़ी जेनी का फोन आया आके सुन लो। तो ऐसे भी हो जाता है कई बार।
सही कह रहे हैं।
और कई खवातीन तो यकीन जानो वो इतनी लापरवाह होती है ना अपने आदमियों के हवाले से।
अच्छा,
उनको समझ ही नहीं आती कि जवाब क्या देना है किसी। हाँ। औरत को आके ना बच्चे ने कह दिया,
अच्छा
आंटी आंटी आपका जो है ना शोहर वो गिर गया कुएं में।
अच्छा,
इतनी टेंशन ना लो, हमने फिल्टर लगवाया हुआ। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही कि शोहर बेचारा बेच डिग्गा हुआ है, उसको पानी साफ मिलने की बात समझ।
सही कह रहे अंकल आप। अच्छा अंकल, अब हम इस पर तो बातचीत हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं वो इस बारे में जरूर मुस्बत नजर
अमल जो है वो अपनाएंगे। हकीकत है
जी,
ये मजाक की बातें अलग होती है, मजाक मजाक में तो पता नहीं क्या क्या बंदा कह
जी,
जाता है
अंकल।
लेकिन ये है कि ये देखो हम अपने माशरे पे गौर करें ना, बसों में जाएं, वैगनों में जाएं, हां जी ट्रेन के सफर में जाएं
जी,
तो अक्सर जो आदमी होते हैं ना वो खवातीन के साथ जो है छेड़खानी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं
जी।
और कई खवातीन को मैंने देखा है, यकीन जानो बंदा कल्ला जो है ना काटन का सूट पहन के,
हाँ
तो बाजू ऐसे लटकाए जा रहा होता है और बीवी ने बैग भी उठाया होता है,
हाँ
और बच्चे को भी उठाया होता है। मुझे तो यकीन जानो ऐसे बंदों पे शर्म आती है कि यार ये कौन सा बंदा है कि जिसने जी, एक तरफ हम उनको सिन्फे नाजक भी कहते हैं और दूसरी तरफ घर का भी सारा काम उनसे करवाना है, फिर ऐसे कहीं आना जाना है कि हमारी चौधर में फर्क ना पड़े।
लेकिन अंकल ये तो एक बात थी, दूसरी तरफ हम खवातीन से भी यही कहेंगे कि घर के मामलात अगर घर में ही रह जाएं, वहीं से सुलझ जाएं तो बहुत बेहतर होता है। ऐसा ना हो कि खवातीन जो है वो इस कानून से नजायज फायदा उठाएं और जो है घर की बातें जो है घर से बाहर आए।
हाँ,
उसी सूरत में बाहर आनी चाहिए जब बर्दाश्त से बात आगे निकल जाए।
असल में होता ये है कि बहुत सारी चीजें हमें हमारे हकूक दिलवाने के लिए वजूद में आती हैं
जी,
बहुत सारी चीजें जो है ना हमें तहफ्फुज़ देने के लिए वजूद में आती हैं, लेकिन हम उनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब खवातीन को अगर ये हक मिल गया है या ये कानून पास हो गया तो उनको भी चाहिए कि कोशिश करें अपने खानदान को नथी करके जोड़ के और एक जगह पे इकट्ठा करके रखे।
बिल्कुल,
लेकिन अगर इस कानून का वो तलवार लटकाए रखे बंदे के सर पे
तो
वो भी नजायज हो जाएगा कि खबरदार तूने अगर जो बर्तन साफ ना ना सही किए तो मैंने थाने में रिपोर्ट कराऊंगी। कई खवातीन तो करती है ऐसे है ना, कहते हैं बस टेंशन ना लो, घर के सारे काम मैंने करने हैं, सवेरे उठ के नाश्ता तुम बना देना,
खाऊंगी
खा मैं लूंगी, है जी दोपहर को खाना तुम बना देना खा मैं लूंगी। तो ये तरीका होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये घर घर की कहानी ऐसी नहीं होती।
बिल्कुल,
लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो है असल में वो कहते हैं ना कि दो पहिए होते हैं ये एक गाड़ी के
जी,
तो ये हकीकत है। हम दोनों को मिलके यानी कि मियां और बीवी दोनों को मिलके जो है ना वो अपनी ये जिंदगी की गाड़ी चलानी होती है, अपनी अज़दवाजी जिंदगी की।
बिल्कुल,
और अगर उसमें एक पहिया जो है वो कहे कि मैंने मशरक को जाना है और दूजा कहे मैंने मगरब को जाना है, تو پھر میرا مطلب ہے کہ زندگی چلانی تھوڑی سی اوکھی ہو جائے.
جی بالکل, اور اس سفر کو, زندگی کے سفر کو جتنی بھی خوبصورتی سے گزارا جائے اتنا ہی اچھا ہے. پورے خاندان کو جوڑ کے رکھنا بھی ایک خاتون کا ہی فرض ہے. اس لیے ہم اپنی خواتین بہنوں سے بھی یہی کہیں گے کہ جب بھی آپ اس قانون کی طرف سوچیں تو پہلے اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری سمجھداری سے گھر کو چلائیں, اور ایسا ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا نہ کرے کہ اس بات کی نوبت آئے کہ آپ کو اس قانون کا سہارا لینا پڑے. سب سے بڑا قانون جو ہے وہ آپ کی عقل ہے, آپ کی فہم و فراست ہے, جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کو عمدہ طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اپنے خاوند سے ہم آہنگی جو ہے مزید پیدا کر سکتی ہیں.
ہاں جی بالکل, کئی دفعہ نا اس کو ہم غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں نا اگلے بندے کو خوف زدہ کرنے کے لیے.
جی جی,
وہ بندے کی نوی نوی شادی ہو گئی.
ہاں ہاں,
اب اس کو لڑکی کے گھر والوں کا ظاہر سی بات ہے پہلے بندوں کو نہیں پتا ہوتا تھا, بڑے بزرگ ہی کرتے تھے سارے.
جی جی بالکل,
اس کو گھر والوں کا پتہ ہی نہیں تھا.
ہاں,
اب بندے نے تھوڑی سی بھی بات کرنے لگنی.
ہاں,
تو لڑکی نے کہنا بتاؤں پھر اپنے بھائی کو.
اچھا,
بلاؤں پھر اپنے بھائی کو. بندے نے چپ کر جانا, پتہ نہیں کتنا کو گنڈا بدماش ہے اس کا بھائی.
ہاں,
یہ جو بار بار دھمکیاں دیتی رہتی ہے.
ہاں,
ایک دن وہ پھر کوئی بات کہنے لگا تو کہتی ہے بلاؤں پھر اپنے بھائی کو.
اچھا,
کہتا ہے بلاؤ تمہارا بھائی ہے کتنا کو, کہتے ہیں 2.5 سال کا. اس کے سر پہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ بلاؤں پھر اپنے بھائی کو, اور بعد میں پتا چلا 2.5 سال کا بھائی ہے.
چلے انکل, ہماری تو یہی دعا ہے کہ سب خوش رہیں اور ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی زندگیاں بسر کریں. اب انکل جی آتے ہیں ایک انفارمیشن کی جانب, ایک معلومات ہے بڑی مزے کی, تو ہم اپنے دوستوں سے یہ بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں.
ہاں جی بالکل, کچھ دلچسپ قسم کی معلومات ہمارے سامنے جو ہے وہ توقع کرتے ہیں کہ ان تک ہم باہم پہنچائیں گے.
جی ہاں, اور آج ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے برف پر دوڑنے والی سائیکل کے حوالے سے.
شاباش, کر لو باتیں. برف پہ سائیکل تو سائیکل ہی ہوتی ہے, وہ سڑک پہ ہو پا میں برف پہ اس کا تو کام ہی دوڑنا ہے.
لیکن انکل سائیکل جو ہے وہ سڑک پہ تو دوڑ سکتے, لیکن برف میں اتنی تیزی سے وہ پھسل جائے گی نا.
ہاں جی,
سڑکوں پر جو برف جمی ہوئی ہوتی ہے.
ہاں جی بالکل, ظاہر سی بات ہے. اچھا, پھسلنے کے حوالے سے کہہ رہی ہے.
جی,
ویسے کئی تو بندے جو ہیں وہ رڑے پہ پھسل جاتے ہیں, یقین کرو. بعد میں خود ہی جا رہے ہوں گے, اکیلی سائیکل پہ جا رہے ہوں گے, نہ کوئی ادھر نہ ادھر, نہ آگے نہ پیچھے, تو گر جائیں گے. اور پھر کپڑے کپڑے چاڑتے ہوئے پیچھے کو دیکھیں گے, خود بھی کہہ رہے ہوں گے آئی ایم سوری, پھر سائیکل لے کے آگے چلے جائیں.
ارے انکل, آپ بھی نہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں سیکھ کے آ جاتے ہیں. اچھا انکل سنیے, یہ خبر سنیے. کہتے ہیں کہ برف کے بعد سڑکوں پر جمی ہوئی جو برف ہوتی ہے, اس پر پھسلنے سے سائیکل چلانا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے, جس کے باعث کئی حادثات جو ہیں رونما ہو جاتے ہیں. لیکن نیدرلینڈ میں چند ذہین افراد نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے سائیکل کے ٹائروں کے لیے ایک ایسی منفرد بائک سپائکس تیار کیے ہیں, جن کی بدولت اب شدید برف باری میں بھی سائیکل چلانا آسان ہو جائے گا.
ویری گڈ, ویسے اس کا آسان حال تو میرے پاس بھی تھا.
کیا تھا؟
بندہ تین پہیوں والی سائیکل چلا رہے.
اچھا کل, ان بائک سپائکس کو پلاسٹک سے بنا کر ان پر کانٹوں کی طرح ابھرے ہوئے مضبوط ٹکڑے نمایاں کیے گئے ہیں, جو سڑک پر جمی برف میں دھس کر ٹائروں کو پھسلنے سے محفوظ بناتے ہیں, اور برف باری ختم ہونے کے بعد ان سپائکس کو ہٹا کر سائیکل سڑکوں پر چلنے کے قابل بھی بنائی جا سکتی ہیں.
ویری گڈ بھائی, شاباش, بڑا اچھا. ویسے یہ کسی کا ذہن چلا ہے جی, وہ جب برف پہ جائے بندہ
جی,
تو وہ جو ہے وہ کیا لگتے ہیں اس کو, وہ نیچے کلو ٹائپ کی کوئی شے ہوگی نا, ہے
جی,
اور سڑک پہ جا کے اس کو پھر سیدھا کر لے, ہے
جی.
ویسے یہ اپنے اپنے فن کی بات ہوتی ہے, اپنی اپنی عقل کی بات ہوتی ہے, لیکن کئی تو یقین جانو عقل کے اتنے بیوقوف ہوتے ہیں نا, مجھے سمجھ نہیں آتی
کیا.
لیکن کئی دفعہ لوگ ان کے بارے میں جو ہے نا کچھ اور ہی سوچ لیتے ہیں. وہ کوئی بندہ تھا نا پاگل خانے میں, ہے جی, اس کے پاس جو ہے نا وہ کیس بنا ہوا تھا کہ اس نے کچھ کیا, تو اس کو پاگل خانے میں داخل کرایا ہوا.
اچھا اچھا,
تو ایک بندے نے اس کو کہہ دیا, وہ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم نے تمہارا ٹھیک ٹھاک جائزہ لیا ہے, اور ہمیں پتا چل گیا کہ تم نے نہر میں ڈوبتے ہوئے ایک بندے کو بچایا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تم اب پاگل بالکل نہیں ہو.
اچھا,
کہتے ہیں جی شکریہ. تو ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حادثہ اس کے ساتھ بعد میں بھی پیش آ گیا ہے, بندے نے کسی بندے نے اس کو نہ رسی کے ساتھ لٹکا کے تو مار دیا. کہتے ہوئے وہ بندہ مر گیا؟ کہتے ہاں جی مر گیا. کہتے میں نے تو اس کو سوکھنے کے لیے ڈالا ہوا تھا.
और दोस्तों इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहते एक छोटे से वक्ते का, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। दोस्ती रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बसने दीवान जी। दोस्तों और एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी जी बर्फ पर दौड़ने वाली साइकिल के हवाले से कि किस तरह लोग जो हैं वो इन छोटी मोटी मुश्किलात से निमटने के लिए नए नए जो ख्यालात हैं उनको अमली शक्ल देते रहते हैं ताकि इन मुश्किलात से निजात हासिल की जाए। जैसे कि अभी बाहर के ममालिक है वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और बर्फबारी में फिसलन हो जाती है और आमतौर पर लोग जो है वो साइकिलिंग करना वहां पर पसंद करते हैं।
मुझे एक बात बताओ
जी,
वैसे तुम मुझे सवाल का जवाब दो
जी अंकल।
बारिश हो रही हो
हाँ?
और बंदा भीगे भी ना, बताओ कैसे?
छतरी से
घर में बैठा रहे, उसे बाहर निकलने की जरूरत क्या है जब बारिश हो रही है तो?
अरे अंकल बाहर निकलना तो पड़ता है, अब हम लोग ड्यूटीज पर आते हैं, बारिश हो रही है तो हम क्या छुट्टी कर लें?
शाबाशी कर लो बातें। नहीं मतलब हर बंदे के लिए तो नहीं ना, मैंने तो किसी बंदे की बात की है, कई बंदे मेरे जैसे भी मसरूफ होते हैं जो घर से हफ्ते बाद ही निकलते हैं।
जी 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 अंकल जी, जाहिर है घर में कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं।
इन्होंने तो बर्फ पे चलने वाली साइकिल तैयार की है ना, मैंने यकीन जानो कीचड़ में से निकलने वाले जूते भी तैयार कर लिए।
नहीं
हाँ जी, के आप कीचड़ में से निकल के जाए, जाहरी सी बात है भाई जिस बंदे के पास जो चीज होनी है बंदे ने उसी की बात करनी है।
कल आपने तो बड़ा मसला हल कर दिया।
हाँ जी, हमारी गली मल्लों में जो बारिशें होती है तो कीचड़ होना होता है
अंकल,
हमने तो उसी हवाले से करना है ना, बर्फ तो कभी इधर पड़ी नहीं है।
जी बिल्कुल अंकल, जल्दी से बताया, पता मेरे मोहल्ले में भी कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता है बारिश की वजह से और मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि जूते इतने खराब हो जाते हैं, इतने खराब हो जाते हैं कि दोबारा पहनने के काबिल ही नहीं रहते।
हाँ जी, घर से जब निकलना है ना
जी
तो जूतों पे छापर चढ़ा के बंदा निकल आए।
बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। अगर छापर के साथ फिसल गए तो कपड़े भी बर्बाद हुए ना।
नहीं नहीं, जब फिर सड़क पे आ जाना है ना
फिर
छापर उतार देने हैं। ये वही है वो स्पैक्स की तरह है कि बर्फ में वो चढ़ाने हैं वो, और जब बर्फ से बाहर निकलना है आप सड़क पे, फिर उतार देने हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो छापर आपने कीचड़ में से निकलने के लिए इस्तेमाल किए हैं, एहतियाती तदाबीर बता
जी, जी, जी,
इनको जो है आपने किसी कूड़ादान में डालना है, बाहर नहीं फेंकना।
अंकल वैसे महान हैं आप और कसम से सलाम करने को जी चाहता है जो आपने ऐजादात शुरू की।
मैंने कभी गुरूर किया ही नहीं है।
अंकल गुरूर कीजिएगा भी ना। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा, अपनी कीमती राय से जरूर आगाही दीजिएगा और हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं ये भी जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ तावन जरूर करेंगे और अपनी कीमती राय से आगाही भी देते रहेंगे। और अब अपने मेजबान इरम इमरान और अंकल दीवान को आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए।
जब सीता